हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जिसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस 201 से 210 में प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिएशन ऑफ एजेंसी को समझा था। तो जब किसी एजेंसी का क्रिएशन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते। कई बार ऐसी सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एजेंसी के क्रिएशन में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है, और वह लीगल रिलेशनशिप यदि किसी तरीके से ख़त्म हो जाती है तो फिर एजेंसी भी खत्म हो जाती है, यानी कि उसका टर्मिनेशन हो जाता है। तो एजेंसी का टर्मिनेशन कैसे होता है, इसको आज हम समझते हैं। देखिए, एजेंसी को मेनली तो हम दो प्रकार से टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक है बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज, और दूसरा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज का मतलब है प्रिंसिपल और एजेंट्स के एक्ट्स के द्वारा एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, और दूसरा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि इसमें प्रिंसिपल और एजेंट्स की कोई भूमिका नहीं होती है, केवल विधि के कार्यों द्वारा ही इसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज को हम तीन प्रकार से समझते हैं, यानी कि बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज में तीन प्रकार हैं जिसके माध्यम से एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट है इसमें बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें यानी कि बोथ पार्टीज, यानी प्रिंसिपल और एजेंट यदि राजी हैं कि इस एजेंसी को आगे नहीं चलाना, यहीं समाप्त करना है, तो ये बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसमें बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, कि प्रिंसिपल के माध्यम से भी एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, देखिए, तो जब जैसा कि आप जानते हैं कि एजेंसी के क्रिएशन में प्रिंसिपल एजेंट को जो है वो अथॉरिटी देता है, यदि वो अथॉरिटी रिवोक कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो अथॉरिटी का रिवोकेशन है ये शर्तों के अधीन है, ठीक है। यदि एजेंट के कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक करता है, ठीक है, तो इसकी एक युक्तियुक्त सूचना एजेंट को देगा, ठीक है, तब उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ये ऐसा अगर नहीं करता है तो जो है वो एजेंट प्रतिकर मांगने का हकदार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि प्रिंसिपल कार्य के बीच में अपनी अथॉरिटी को रिवोक करता है, ठीक है, तो जितना कार्य एजेंट कर चुका है तो उस कार्य के लिए जो है वो प्रिंसिपल लायबल होगा, और जो शेष कार्य रह गया तो उसके संबंध में एजेंसी का टर्मिनेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा जो प्रकार है वो बाय द एजेंट है। तो जिस प्रकार प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी वापस लेकर रिवोक करके एजेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर देता, उसी तरीके से एजेंट भी कार्य को आगे करने से मना करके जो है वो एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो किया जाएगा, उसके द्वारा जो मना किया जाएगा कार्य करना, वो भी शर्तों के अधीन है, ठीक है। यदि फिक्स टाइम के लिए एजेंसी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एजेंट जो है बीच में कभी भी कार्य करने से मना कर सकता है, लेकिन इसकी युक्ति सूचना प्रिंसिपल को देगा, ठीक है। दूसरा ये, यदि बीच से फिक्स टाइम के लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी फिक्स कार्य के लिए कि ये निश्चित कार्य इसको कंप्लीट करना है, या निश्चित समय के लिए की गई है, अब बीच में से अगर एजेंट कार्य करने से मना कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर प्रिंसिपल को कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई के लिए भी एजेंट दायी होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट मेन हेड था बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज।